नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली पुलिस ने एनआईए के मोस्ट वांटेड और संदिग्ध आईएसआईएस आतंकवादी शाहनवाज सहित दो अन्य को गिरफ्तार किया। निर्वाचन आयोग अगले तीन दिनों में तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, इसरो को अब दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसी माना जाता है। इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दी। और हांगचोउ एशियाई खेलों में पीवी सिंधु और एचएस प्रणय आज अपना सिंगल्स बैडमिंटन अभियान शुरू करेंगे। लवलीना बोरगोहेन सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। 13 स्वर्ण, 24 रजत और 23 कांस्य के साथ भारत के 60 पदक। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जाएंगे। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बस्तर संभाग के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री बस्तर के नगरनार में स्थापित एनएमडीसी के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
प्रधानमंत्री अपने जगदलपुर प्रवास के दौरान जगदलपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखने के साथ ही अंतागढ़ तारोकी के बीच नई रेल लाइन और जगदलपुर दंतेवाड़ा के बीच डबल रेल लाइन परियोजना का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री तारोकी रायपुर के बीच ट्रेन सेवा का भी शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं से इस जनजातीय इलाके में रेल कनेक्टिविटी में सुधार होगा तथा इलाके के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री इस अवसर पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 45 में कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा के बीच बनी नई सड़क का भी लोकार्पण करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तेलंगाना में मनोहराबाद और सिद्दीपेट के बीच नई रेलवे लाइन का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी धर्माबाद और मनोहराबाद के बीच रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का भी लोकार्पण करेंगे। वे तेलंगाना के निजामाबाद से आंध्र प्रदेश के महबूब नगर और कर्नूल की रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री निजामाबाद में 8,000 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। वे रामगुंडम में एनटीपीसी के 800 मेगावाट का बिजली घर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये अत्याधुनिक बिजली घर 6,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और यहां उत्पादित 85% बिजली कम लागत पर राज्य में ही उपयोग की जाएगी। इस परियोजना से उत्तर और दक्षिण ग्रिड के बीच संपर्क में सुधार होगा और साथ ही प्रत्यक्ष परोक्ष रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। श्री मोदी 20 जिला मुख्यालयों में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का भी शिलान्यास करेंगे। 516 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 50 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष तैयार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले स्मृति चिन्हों की ई नीलामी कल से आम जनता के लिए शुरू हो गई। बोलियां इस महीने की 31 तारीख तक जारी रहेंगी। इस नीलामी से एकत्रित धनराशि पवित्र गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे परियोजना को दान कर दी जाएगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने दक्षिणी दिल्ली में जैतपुर से संदिग्ध आईएसआईएस आतंकवादी शाहनवाज को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए को इसकी तलाश थी और इस पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। शाहनवाज के अलावा 2 और अन्य वांछित आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त एचएस ढालीवाल ने बताया कि शाहनवाज के ठिकाने से पाकिस्तान स्थित संचालकों की ओर से भेजे गए बम बनाने के सामान तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि इन लोगों ने अपने ठिकाने बनाने के लिए हुबली, धारवाड़ सहित दक्षिण भारत और गुजरात के अहमदाबाद में रेकी की थी। इन तीनों संदिग्ध आतंकवादियों को कल अदालत में पेश किया गया। इन्हें 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। बिहार सरकार ने कल जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी कर दी। राज्य के प्रभारी मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने पटना में यह रिपोर्ट जारी की। 100 प्रश्न से अधिक की इस रिपोर्ट में राज्य की जनसंख्या 13,07,00,000 से अधिक रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य की आबादी में अति पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत सबसे अधिक है। दूसरा सबसे बड़ा सामाजिक प्रतिनिधित्व पिछड़े वर्ग का है, जो 27.12% है। अनुसूचित जाति 19.65%, जबकि अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व सबसे कम यानी 1.68% है। सामान्य वर्ग यानी अनारक्षित वर्ग 15.52% है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का एक दल अगले 3 दिनों तक तेलंगाना में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगा। इस दौरान ये दल आज राजनीतिक दलों और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठकें करेगा। आयोग के इस दल को कल जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षक द्वारा चुनाव तैयारियों को लेकर जानकारी दी जाएगी। दौरे के अंतिम दिन आयोग की टीम राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करेगी। तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। तेलंगाना सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के नए वेतनमान के लिए दूसरी वेतन संशोधन समिति पीआरसी गठित की है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कल हैदराबाद में इस निर्णय की घोषणा की। 2 सदस्यों वाली समिति में अध्यक्ष के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी एन शिवशंकर और बी रमैया को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। समिति को 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत का कद लगातार बढ़ रहा है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में इसरो वैज्ञानिकों को सम्मानित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के रहते हुए भी अब इसरो को दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसी माना जाता है।
ये पुरस्कार कभी कभी कुछ एक ऐसे मित्रों को दिए जाते हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रहती, और वो स्वयं पुरस्कार के लिए इसलिए अपेक्षित नहीं रहते, ना उनके पास ये समय होता है ना उस प्रकार की उनकी सोच होती है। लेकिन जब संत सम्मेश्वर ईश्वर सम्मान उनको प्राप्त होता है तो आप केवल उनको सम्मान नहीं दे रहे, ना ही आप केवल अपना चित्र खिंचवा रहे हैं, आप समाज की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने वैज्ञानिकों को उनकी सफलता और उपलब्धि के लिए बधाई भी दी। सरकारी कार्यालयों में विशेष स्वच्छता अभियान का तीसरा चरण कल से शुरू हो गया। ये विशेष अभियान इस महीने की 31 तारीख तक जारी रहेगा। ये पिछले 2 वर्षों से चलाए गए विशेष अभियानों की अगली कड़ी है। पंजाब सरकार ने 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कचरा मुक्त भारत विषय के साथ राज्यव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी के प्रमुख कार्यक्रमों के तहत जल शक्ति मंत्रालय और भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक संयुक्त पहल थी।
राज्य भर से कुल 24 ग्राम पंचायतों को उत्तम ग्राम पुरस्कार, 23 स्कूलों को उत्तम विद्यालय पुरस्कार और 23 सफाई सेवकों को उत्तम सफाई सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी सम्मान मिला है। इन पंचायतों, स्कूलों और सफाई सेवकों ने स्वच्छता, तरल और ठोस कचरे के उचित प्रबंधन को लेकर उत्कृष्ट कार्य किया है। इन सभी ने अपने आसपास के वातावरण को सुंदर बनाने, स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और अपने क्षेत्रों में नागरिकों को बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने में भी योगदान दिया है। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर में संस्कृति महोत्सव में भाग लिया। इस कार्यक्रम में कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने कर्नाटक के कलाकारों का जम्मू कश्मीर में स्वागत किया और भारतीय संस्कृति की विविधता को बढ़ावा देने में जम्मू कश्मीर कला और संस्कृति अकादमी के प्रयासों की सराहना की। उपराज्यपाल ने कहा कि हमारा प्रमुख उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता को लोकप्रिय बनाना और युवाओं को देश की अद्भुत प्रदर्शन कलाविधाओं से जोड़ना है। संयुक्त अरब अमीरात में अबुधाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन कल अबुधाबी के राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में शुरू हुआ। प्रदर्शनी में भारतीय मंडप का उद्घाटन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। कार्यक्रम का विषय है कार्बन उत्सर्जन तेजी से और मिलकर कम करना। ये प्रदर्शनी ऊर्जा आधारित प्रौद्योगिकी, नवाचार, सहयोग और डिजिटलीकरण पर मुख्य रूप से केंद्रित है। चिकित्सा या शरीर क्रिया विज्ञान क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार हंगरी मूल की अमरीकी प्रोफेसर कातलिन कारिको और अमरीका के प्रोफेसर डी यू वाइजमैन को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। इन दोनों वैज्ञानिकों ने ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित की जिससे एमआरएनए आधारित कोविड टीकों का निर्माण संभव हो सका। एमआरएनए तकनीक पारंपरिक टीकों से अलग है। कोविड महामारी के दौरान मॉडर्ना, फाइजर और बायोएनटेक टीके एमआरएनए तकनीक पर आधारित थे। बांग्लादेश में इस वर्ष डेंगू से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,017 हो गई है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय डीजीएचएस के अनुसार सोमवार सुबह तक 24 घंटे में 11 लोगों की डेंगू से मृत्यु हो गई, जबकि 2,596 नए मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांग्लादेश में डेंगू ने गंभीर रूप ले लिया है, जिसके कारण मरने वालों और नए मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। चीन के हांगचोउ में हो रहे एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत को कल 3 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल हुए। भारतीय खिलाड़ी आज कई खेल स्पर्धाओं में अपना पदक सुनिश्चित करेंगे। आज के खेलों की हम बात करें तो क्रिकेट में फिलहाल भारत और नेपाल के बीच क्वार्टर फाइनल मैच जारी है। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने नेपाल को 203 रन का लक्ष्य दिया है। एशियाई खेलों की अन्य खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से निखिल कुमार।
तीरंदाजी में व्यक्तिगत क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के मैच अब शुरू हो चुके हैं और महिला हॉकी में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से हो रहा है। वहीं बैडमिंटन में दूसरे दौर के सिंगल्स और डबल्स मैच आज सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ होंगे। मुक्केबाजी की हम बात करें तो निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, जैस्मिन लैम्बोरिया, दीपक भोरिया, निशांत देव, सचिन, शिव थापा, नरेंद्र और संजीत आज सुबह 11:30 बजे से सेमीफाइनल में अपने अपने मैच खेलने के लिए उतरेंगे। इस बीच स्क्वाश के क्वार्टर फाइनल में मिक्स्ड डबल्स और पुरुष तथा महिला सिंगल्स के मैच 10:30 बजे से शुरू हो जाएंगे। एथलेटिक्स के बारे में श्रोताओं आपको बता दें कि मुकाबले दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होंगे। हरमिलन बैंस, कुमारी चंदा, रुबीना यादव, पूजा, प्रवीण चित्रवेल, अब्दुल्ला अबूबकर, सिंचल रवि, विथ्या रामराज, संतोष कुमार, यशस्पी, अंकिता, पारुल चौधरी, अन्नू रानी, कृष्ण कुमार और एमडी अफसल अपने अपने भाग्य आजमाने के लिए मैदान में उतरेंगे। वहीं एथलेटिक्स में कल महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में भारत की इडप्पाली एनसी सोजन ने रजत पदक जीता था। महिलाओं की स्टीपल चेज स्पर्धा में पारुल चौधरी को रजत और प्रीति को कांस्य पदक मिला। 4x400 मीटर रिले मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहा। स्पीड स्केटिंग में कल भारतीय महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता। वहीं टेबल टेनिस में भारत की सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ने महिला डबल्स का कांस्य पदक जीता। एशियाई खेल खबरों में फिलहाल इतना ही।
पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 24 रजत और 23 कांस्य पदकों के साथ कुल 60 पदक लेकर चौथे स्थान पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नईम अख्तर।
धन्यवाद विशाल। बिहार में जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी होने को आज के सभी समाचार पत्रों ने मुख पृष्ठ पर दिया है। जनसत्ता की सुर्खी है कि आबादी में पिछड़ों और अति पिछड़ों की हिस्सेदारी 63%। अमर उजाला लिखता है बिहार में सर्वाधिक 2/3 आबादी पिछड़ा वर्ग की, यादव सबसे ज्यादा। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं बिहार के जातिगत आंकड़ों ने देश में बढ़ाई सियासी हलचल। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्वालियर में एक जनसभा में दिए बयान को प्रमुखता दी है। विकास विरोधी लोग जातपात के नाम पर आज भी बांट रहे। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल आतंकवादियों में से एक शाहनवाज की दिल्ली से गिरफ्तारी कई अखबारों में है। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार देशभर में सीरियल ब्लास्ट करना चाहते हैं तीनों हार्डकोर आतंकी। दैनिक जागरण का कहना है कि युवाओं की भर्ती कर बना रहे थे स्लीपर सेल। हिन्दुस्तान लिखता है बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट से चीन पर रखी जाएगी पैनी नजर। केंद्र सरकार भारत चीन सीमा पर खुफिया सूचनाएं एकत्र करने के लिए बनाएगी चौकियां। पंजाब के 40 सरकारी अस्पताल होंगे हाईटेक। दैनिक ट्रिब्यून में है सेहतमंद पंजाब अभियान की हुई शुरुआत।
धन्यवाद नईम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली पुलिस ने एनआईए के मोस्ट वांटेड और संदिग्ध आईएसआईएस आतंकवादी शाहनवाज सहित 2 अन्य को गिरफ्तार किया। निर्वाचन आयोग अगले 3 दिनों में तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा इसरो को अब दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसी माना जाता है। इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दी। और हांगचोउ एशियाई खेलों में पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय आज अपना सिंगल्स बैडमिंटन अभियान शुरू करेंगे। लवलीना बोरगोहेन सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। 13 स्वर्ण, 24 रजत और 23 कांस्य पदक के साथ भारत के 60 पदक। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।